संबंध। अब आगे के श्लोक में भगवान अर्जुन की मान्यता का अनुमोदन करते हुए मन के निग्रह के उपाय बताते हैं। श्री भगवान वाच असंशय महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। श्री भगवान बोले, हे महाबाहो, ये मन बड़ा चंचल है और इसका निग्रह करना भी बड़ा कठिन है। ये तुम्हारा कहना बिल्कुल ठीक है, परंतु हे कुंती नंदन, अभ्यास और वैराग्य के द्वारा इसका निग्रह किया जाता है। व्याख्या, असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम। यहां महाबाहो संबोधन का तात्पर्य शूरवीरता बताने में है, अर्थात अभ्यास करते हुए कभी उकताना नहीं चाहिए, अपने में धैर्य पूर्वक वैसी ही शूरवीरता रखनी चाहिए। अर्जुन ने पहले चंचलता के कारण मन का निग्रह करना बड़ा कठिन बताया, उसी बात पर भगवान कहते हैं कि तुम जो कहते हो वे एकदम ठीक बात है, निसंदिग्ध बात है, क्योंकि मन बड़ा चंचल है और उसका निग्रह करना भी बड़ा कठिन है। अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। अर्जुन की माता कुंती बहुत विवेकवती तथा भोगों में विरक्त रहने वाली थी। कुंती ने भगवान श्री कृष्ण से विपत्ति का वरदान मांगा था। ऐसा वरदान मांगने वाला इतिहास में बहुत कम मिलता है। अतः यहां कौन्तेय संबोधन देकर भगवान अर्जुन को कुंती माता की याद दिलाते हैं कि जैसे तुम्हारी माता कुंती बड़ी विरक्त है, ऐसे ही तुम भी संसार से विरक्त होकर परमात्मा में लगो, अर्थात मन को संसार से हटाकर परमात्मा में लगाओ। मन को बार बार ध्येय में लगाने का नाम अभ्यास है। इस अभ्यास की सिद्धि समय लगाने से होती है। समय भी निरंतर लगाया जाए, रोजाना लगा जाए, कभी अभ्यास किया कभी नहीं किया, ऐसा नहीं हो। तात्पर्य यह है कि अभ्यास निरंतर होना चाहिए और अपने ध्येय में महत्व तथा आदर बुद्धि होनी चाहिए। इस तरह अभ्यास करने से अभ्यास दृढ़ हो जाता है। अभ्यास के दो भेद हैं, अपना जो लक्ष्य है, ध्येय है, उसमें मनोवृत्ति को लगाए और दूसरी वृत्ति आ जाए, अर्थात दूसरा कुछ भी चिंतन आ जाए उसकी उपेक्षा कर दे, उससे उदासीन हो जाए। और दूसरा भेद है जहां जहां मन चला जाए वहां वहां अपने लक्ष्य को, इष्ट को ही देखे। उपर्युक्त दो साधनों के सिवाय मन लगाने के कई उपाय हैं। जैसे उपाय पहला, जब साधक ध्यान करने के लिए बैठे तब सबसे पहले दो बार श्वास बाहर फेंककर फिर ऐसी भावना करे कि मैंने मन से संसार को सर्वथा निकाल दिया, अब मेरा मन संसार का चिंतन नहीं करेगा, भगवान का ही चिंतन करेगा, और चिंतन में जो कुछ भी आएगा वह भगवान का ही स्वरूप होगा। भगवान के सिवाय मेरे मन में दूसरी बात आ ही नहीं सकती। अतः भगवान का स्वरूप वही है जो मन में आ जाए, और मन में जो आ जाए वही भगवान का स्वरूप है। यह वासुदेव सर्वम का सिद्धांत है। ऐसा होने पर मन भगवान में लगेगा और लगेगा ही कहां। दूसरा, भगवान के नाम का जप करें, पर जप में दो बातों का ख्याल रखें। एक तो नाम के उच्चारण में समय खाली न जाने दें, अर्थात राम राम इस तरह नाम का भले ही धीरे धीरे उच्चारण करें, पर बीच में समय खाली न जाने दे। और दूसरे, नाम को सुने बिना न जाने दे, अर्थात जप के साथ साथ उसको सुने भी। तीसरा, जिस नाम का उच्चारण किया जाए मन से उस नाम की निगरानी रखे, अर्थात उस नाम को अंगुली अथवा माला से न गिनकर मन से ही नाम का उच्चारण करे और मन से ही नाम की गिनती करे। चौथा, एक नाम का तो वाणी से उच्चारण करे और दूसरे नाम का मन से जप करे। जैसे वाणी से तो राम 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 का उच्चारण और मन से कृष्ण 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 का जप करे। पांचवा, जैसे राग रागनी के साथ बोलकर नाम का कीर्तन करते हैं, ऐसे ही राग रागनी के साथ मन से नाम का कीर्तन करें। चरणों से लेकर मुकुट तक और मुकुट से लेकर चरणों तक भगवान के स्वरूप का चिंतन करें। सातवां, भगवान मेरे सामने खड़े हैं ऐसा समझकर भगवान के स्वरूप का चिंतन करें। भगवान के दाहिने चरण की पांच अंगुलियों पर मन से ही पांच नाम लिख दे। अंगुलियों के ऊपर का जो भाग है उस पर लंबाई में तीन नाम लिख दे। चरणों की पिंडी का जो प्रारंभ है उस पिंडी की संधि पर दो नाम के कड़े बना दे। फिर पिंडी पर लंबाई में तीन नाम लिख दे। घुटने के नीचे और ऊपर एक एक नाम का गोल कड़ा बना दे, अर्थात गोलाकार नाम लिख दे। उरु माने जंघा पर लंबाई से तीन नाम लिख दे। आधी दाहिने तरफ की कमर में दो नामों की करधनी बना दे। तीन नाम पसली पर लिख दे। दो नाम कंधे पर और तीन नाम बाजू पर भुजा के ऊपर के भाग पर लिख दे। कोहनी के ऊपर और नीचे दो दो नाम का कड़ा बना दे। फिर तीन नाम कोहनी के नीचे पहुंचा से ऊपर के भाग पर लिख दे। पहुंचा में दो नामों का कड़ा बना दे तथा पांच अंगुलियों पर पांच नाम लिख दे। गले में चार नामों का आधा हार और कानों में दो नामों का कुंडल बना दे। मुकुट के दाहिने आधे भाग पर छह नाम लिख दे, अर्थात नीचे के भाग पर दो नामों का कड़ा, मध्य भाग पर दो नाम का कड़ा और ऊपर के भाग पर दो नाम का कड़ा बना दे। तात्पर्य यह हुआ कि भगवान के दाहिने अंग में चरणों से लेकर मुकुट तक 54 नाम अथवा मंत्र आने चाहिए और बाएं अंग में मुकुट से लेकर चरण तक 54 नाम अथवा मंत्र आने चाहिए। इससे भगवान की एक परिक्रमा हो जाती है, भगवान के संपूर्ण अंगों का चिंतन हो जाता है। और 108 नामों की एक माला भी हो जाती है। प्रतिदिन ऐसी कम से कम एक माला करनी चाहिए, इससे अधिक करना चाहे तो अधिक कर सकते हैं। इस तरह अभ्यास करने के अनेक रूप अनेक तरीके हैं। ऐसे तरीके साधक स्वयं भी सोच सकता है। अभ्यास की सहायता के लिए वैराग्य की जरूरत है, कारण कि संसार के भोगों से राग जितना हटेगा मन उतना परमात्मा में लगेगा। संसार का राग सर्वथा हटने पर मन में संसार का राग पूर्वक चिंतन नहीं होगा, अतः पुराने संस्कारों के कारण कभी कोई स्फुरणा हो भी जाए तो उसकी उपेक्षा कर दे, उसमें राग न करे न द्वेष करे, फिर वह स्फुरणा अपने आप मिट जाएगी। इस तरह अभ्यास और वैराग्य से मन का निग्रह हो जाता है, मन पकड़ा जाता है। वैराग्य होने के कई उपाय हैं, जैसे संसार प्रतिक्षण बदलता है और स्वरूप कभी भी तथा किसी भी क्षण बदलता नहीं है, अतः संसार हमारे साथ नहीं है और हम संसार के साथ नहीं है। जैसे बाल्यावस्था युवावस्था हमारे साथ नहीं रही, परिस्थिति हमारे साथ नहीं रही, ऐसा विचार करने पर संसार से वैराग्य होता है। दूसरा उपाय, अपने कहलाने वाले जितने कुटुंबी संबंधी हैं वे हमसे अनुकूलता की इच्छा रखते हैं, तो अपनी शक्ति सामर्थ्य योग्यता समझ के अनुसार उनकी न्याय युक्त इच्छा पूरी कर दे और परिश्रम करके उनकी सेवा कर दे, परंतु उनसे अपनी अनुकूलता की तथा कुछ लेने की इच्छा का सर्वथा त्याग कर दे। इस तरह अपने सामर्थ्य के अनुसार वस्तु देने से और परिश्रम करके सेवा करने से पुराना राग मिट जाता है और उनसे कुछ भी न चाहने से नया राग पैदा नहीं होता। इससे स्वाभाविक ही संसार से वैराग्य हो जाता है। जितने भी दोष पाप दुख पैदा होते हैं वे सभी संसार के राग से ही पैदा होते हैं, और जितना सुख शांति मिलती है वो सब राग रहित होने से ही मिलती है, ऐसा विचार करने से वैराग्य हो ही जाता है।